किताब हज के मसाइल चंगी ये बताए कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट किताब हज का बाब है, अब ये सारा किताब हज को समझना, इसलिए कि इसमें इतने बारीक मसाइल होते हैं कि ये जो हम दूसरी चीजें पढ़ते हैं, जैसे हमने सियाम का पढ़ा, हमने नमाज का पढ़ा, कुछ ना कुछ आप फिगर आउट कर ही लेते हैं, तो तुक्के भी लगी जाती है। स्पेसिफिक मसाइल होते हैं कि उसमें ना तो कोई तुक्के लग सकते हैं और किस चीज में भी कुछ भी इतनी बारीकियां हो सकती हैं कि वो हम ऐसे नहीं जान सकते, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है मेरे से कोई क्वेश्चन करता है हज के बारे में और वो हालांकि मैंने चीज पढ़ी होती, लेकिन चूंकि ये डेली यूज में नहीं होती है इसलिए मुझे दोबारा चेक करना पड़ता है बुक खोल के कि क्या था, ये भूल जाती है क्योंकि इतने स्पेसिफिक है, किसी एक चीज पे भी किसी को दम लग सकता है, किसी एक चीज पे भी कोई गलती हो सकती है, इसे बहुत छोटी छोटी बहुत केयरफुल रहने वाली चीजें रोजे में इसमें, क्योंकि तो हर साल ही आता है और हर साल वही मसले मसाइल बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए वो इतना, लेकिन हज का जो होता है वो हम तो कभी जिंदगी में बाकी कोई सवाल पूछने को तब होता है, तो इसलिए इनको जरा ज्यादा हज और उम्रे की फैक्टर को अच्छी तरह से आप समझे। क्या हालत एहराम में खुशबू लगाना क्या जायज है? खुशबू लगाना जायज है या क्या मुंह में बस जी बिल्कुल जायज नहीं। अगर पहले से खुशबू लगी हो आपके जिस्म पे तो उसके ऊपर से एहराम पहनना जायज है? जी क्या बात, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा ये एक और क्वेश्चन जो हर बार आता रहता है औरतों की तरफ से, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी डील करती हूँ, इसलिए मुझे पता है किस किस्म के क्वेश्चन लोग पूछते हैं और मैं उनमें आपको चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से बताइए। औरत के लिए एहराम क्या वो खास वाइट चादरी है या वाइट लिबास है या वाइट अबाया है या वाइट स्कार्फ है? औरत के लिए एहराम में रेगुलर कोई भी कपड़े पहने और इबादत कोई भी सादा लिबास जो साथे हो और पर्दा उसके अंदर आपका पूरा हो वो हम कोई असल में इसलिए मैं भी खासतौर पर आपसे पूछे, एक तो बेचारे को ये होता है कि पता नहीं हमने वाइट ही पहनना, दूसरा ऐसे फिर इतना केयरफुल हो जाती है कि टोपी अलग सिलाती है, फिर उसके अंदर नीचे टोपी पहनी है, फिर तब हुआ बाल ना टूट जाए, तो अगर कहीं अच्छा अगर कहीं किसी मिस्टेक बाय मिस्टेक बाल टूट जाता है तो क्या इसके ऊपर कोई दम वगैरह या कोई वो है पेनल्टी है इसके ऊपर? जी सिर्फ पर्दे का ख्याल रखा जैसा पूछना, ये नहीं क्या बात बेचारियाँ इतनी मुश्किल से पढ़ती है कि दो दो तीन तीन स्टाफ नीचे टोपी बांधी है, ऊपर वो क्या गर्मी इतनी है, वो अब वो रहा कि जो है कहीं बाल ना टूट जाए, बाल का ख्याल इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से बहुत ही एक तकल्लुक किया जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, आपका जो स्टाफ है जैसे है आप उस तरह नहीं आराम से, अब ये तो इस तरह कई अब लोगों के बाल, अब हमारे तो इस तरह के हालात आजकल हम सब लोगों के हो गए तो बाल इतने गिरते हैं हम लोगों के, और कई दफा जो होता है कि चादर या दुपट्टा या स्कार्फ लिया जाता है तो हम उतारते हैं तो उसके बाद कोई बाल लगा होता है, अब उसमें तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं, अब वो तो ना हमने खींचा ना हमने कुछ किया, बस अब सर पे लिया था वो किस तरह जो जाहिर गिरते हैं तो साथ लगे होते हैं बाल, वो तो हमें बाद में पता चलता है, तो अब वो बेचारी इतनी घबरा जाती है कि वो यानी स्कार्फ को चेंज करना भी उनको ऐसे होता है कि पता नहीं अगर चेंज भी कर लिया तो कोई इनको बाल ना पूछे, नहीं कोई काम नहीं, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उसके ऊपर कोई पेनल्टी हो। अच्छा अब आदमियों के लिए जूतों का बताइए, औरत के लिए क्या जूते? अच्छा पहले औरत का बता दें, दोनों ज्यादा ये जूते हैं, औरत के लिए क्या जूते पहने? एनी एनी पहन सकती है जूते, नो स्पेशल। आदमी के लिए जूतों का क्या? ओपन है, हाँ जी ओपन, यानी आपका ऊपर से पैर ओपन हो, ऐसे कवर्ड ना हो पूरा, Nej, det är ju i Batman jag har pratat med historien. Det är flip-flops i Batman. Jag har tagit flip-flops av ett namn nu. Och sen visst att jag har inte lärt mig. Så jag har kört mig att. Och sardin i ändar, flip-flops har jag inte kaha till mig. Om jag inte mäller mig. Och flip-flops kittar jag kallar sig att jag inte ränger. Jag kallar sig att jag inte ränger. कोई भी यानी आपकी जो ऊपर है ना पैर का ऊपर का हिस्सा ये जो ऊपर का जो समझ रहे हैं हड्डी या जहाँ पे ये यानी यहाँ पे कोई ऐसी चीज से कवर न हो रहा है ऐसी से कोई कवर न हो रहा है कि पैर पूरी तरह कर कोई सैंडल पहन सकते हैं क्या देखो टखना ना ढका हो या ऊपर बूट की तरह ना हो बकल वाला भी पीछे हो सकता है जैसे आप आम एक वो भी पहन लेते हैं कई सैंडल्स होते हैं ना बहुत ऊपर से जाली की तरह कवर होते हैं वो नहीं सब ओपन हाँ ऊपर से ओपन मगर उसकी कोई भी तरह की वो हो सकती है कई होते हैं अब इस तरह की यहाँ पे कैसे बताओ जैसे औरतों के होते हैं कि जैसे बस अंदर पैर स्लिपिंग कर दिया ऊपर से बस एक बस लेयर की होती है उसमें इसलिए और ज्यादा होता हॉरिजॉन्टल एक लेयर क्या होती है क्या कहते हैं तो चले मतलब उस तरह का अच्छा अगर कोई ना ऐसा पहन सकता हो या ना उसके पास मुयस्सर हो या कोई इसका प्रॉब्लम है नहीं इस तरह से नहीं पहन सकता तो क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए बस ऊपर का भी ना सिर्फ फिंगर्स की बात है ऊपर भी ना इसलिए सॉक्स को पहन सकते हैं मगर सॉक्स का भी क्या कैसी सॉक्स होनी चाहिए कैसी सॉक्स होनी चाहिए एंकल ओपन शायद एंकल ओपन सॉक्स होनी चाहिए यानी आप उसको काट ले नीचे तक कर एक हम जो मिनी टॉप पे सॉक्स पहनते हमने देखा ना जिसमें हमारे टखने भी रुके होते हैं जिसमें टखने नहीं रुके होते अच्छा एक बार मुझे इतना नहीं याद आया आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि देवा अपने बच्चों को जकात दे सकती है मुझे अभी याद आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना कि वो बच्चों की जिम्मेदारी तो बाप की है अगर बाप मर जाए तो फिर किसकी होती है किसकी होती है पता आप लोगों को नहीं मदर की तो नहीं होती अच्छा ये बताएंगे जो तलाक का मामला और उसके मामला आए थे बताइए वैसे कोई मामला नहीं आपको बताया जाइए क्योंकि जब ऐसे मामला आए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो है ना वो फिर दूध पिलाने का फिर कौन उसका खर्चा देगा अगर बाप हाँ जी बिल्कुल खर्चा वगैरह जो उसके यानी ददयाल है दादा है चचा है ताया है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है इस बच्चे की माओ के ऊपर नहीं होती जी वारिश तो नहीं कह सकते क्योंकि वो वारिश तो नहीं उसके बच्चे के हाँ उसके वारिश क्या सकते उस लिहाज से विरासत परम तो उस सूरत के अंदर वो उसके जिम्मेदार होते हैं तो वो उसकी देखभाल करेंगे अब आज के वक्त में अगर ऐसा भी नहीं है किसी का और किसी बच्चे बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि उनका कोई खर्चा उठाने वाला ही नहीं हाँ वो चचा ताया वगैरह देखते हैं तब इस मानी भी जो मां थी उनकी उसने दूसरी शादी कर ली है वैसे भी वो इतनी अमीर है मालदार है और इन बच्चों के लिए बाप उनकी विरासत में भी नहीं कुछ रहा एक तो होता है ना बाप भी तो विरासत में कुछ खेलता है जब बच्चे यतीम है तो सकता है उनकी विरासत में उनको जायदादे नहीं है तो तब तो नहीं आप उनको सरकार देंगे ना उसी में से आप उनका खर्चा पूरा करेंगे लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है और वो बिल्कुल हैंड टू माउथ बिल्कुल ऐसे के आ गए तो फिर माँ अगर इतनी मालदार है तो फिर उनको दे सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है ठीक है पहले सारी चीजें देखेंगे फिर उसके बाद ही फैसला सकता है कि आप इनके ऊपर खर्च कर सकते हैं चले आगे यहाँ पे देखते हैं किताबें हज में आ जाए अच्छा जी आदमी जो है वो सलवार वगैरह पहन सकता है ये भी एक मूवी है ना, मैरिड डॉटर का तो पता उसके हस्बैंड से दिन में है, बर्बाद लेके जा रही हूँ, नहीं पहन सकता आप कह रहे हैं, नहीं पहन सकता। तो आपने ये हदीस पढ़ी है 732, जरा खोले और इसको जरा पढ़े। क्या लिखा है? अगर किसी के पास तहबंद नहीं है, किसी के पास ऐसा खुला कपड़ा नहीं है, तो वो फिर शरबार पहन सकते हैं, ठीक है, पजामा पहन सकते हैं। हाँ जी, तो यानी किसी के पास अगर नहीं है ऐसी कोई चादरें, कोई भी असर नहीं है, तो वो फिर पजामा पहन ले। जैसे वहां पे गए हैं, उसके आराम को कुछ ऐसा हो गया कि नहीं पहनने के काबिल रहा, और वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं और मिला, उसके बाद एक सरदार कर दिया, तो उसने वो पहन लिया, तो फिर मजबूरी के तहत इस तरह से उसके पास मुझे असर ही नहीं, कुछ ऐसे हालात हो गए कि नहीं चादर मिल रही है, तो आप वो फिर पजामा पहन सकते हैं। नहीं, वो उस सूरत में देखिए, हर एक चीज की एक होती है ना कि किस वजह से पहनी जा सकती, आम हालात में नहीं कि हर एक अखबारें पहनती चलने लगे, तो वो नहीं है, ठीक है। अगर उसको मुयस्सर नहीं है, मजबूरी भी आप क्या कहेंगे, मजबूरी भी नहीं, ये कहेंगे अगर उसको मुयस्सर ही नहीं, अगर है ही नहीं उसके पास, वहाँ पे गया एक ही अहराम था, उसके ऊपर कुछ गिर गया, कुछ खराब हो गया, नापाक हो गया, कुछ हो गया, अब ऐसी कोई जगह ही नहीं है, कोई ऐसी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तब अब वो शलवार पहन सकते हैं, ठीक है। या कुछ और मसला हो तो नहीं है, क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह टोपी पहनना या बुर्का पहनना, ये क्या जायज है? टोपी वगैरह पहनना नहीं, टोपी नहीं पहन सकते, ठीक है, पगड़ी नहीं बांध सकते, ये बात सबको समझ आ गई है। अच्छा, इन ये पाक को हम देख लेते हैं, आपको ये तो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई समझने की बात नहीं है, ये सब याद करनी पड़ेगी कि जो पा है, या नजर वालों के लिए कौन सा है, या मन वालों के लिए कौन सा है, लम्लम है या कभी मनाजिर है, ये सब आपको अल्फाज ना याद करने होंगे, इसे कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं। मगर सिर्फ एक बात तो आप लोगों को बतानी थी कि मीकात कौन सी जगह से कहते हैं, मीकात मीकात किस जगह से कहते हैं, कह सकते हैं हरम की हदूद, तो वो तो मीकात के अंदर ही आ जाती है, लेकिन मीकात हाँ जहाँ पे एहराम बांधा जाए उसको क्रॉस करके आगे एहराम बांधे बगैर नहीं जा सकते, उसको आप मीकात कहते हैं, क्योंकि हरम तो जरा छोटा है ना, और मीकात तो इतनी बड़ी है कि गड्ढा भी मीकात नहीं आ जाता है, तो अब वो गड्ढा तो हरम नहीं है, हाजी हो या उमरा वाला, तो कोई भी हो वहाँ से एहराम पहन के जाए। और हरम किसको कहते हैं, हरम को हरम क्यों कहते हैं, लोग बार दफा पूछते हैं कि सवाल के हरम क्या वो, उसको हराम से क्या ताल्लुक है, वो हरम क्यों कहते हैं, मस्जिद हराम क्यों कहते हैं, क्या हराम है वो मस्जिद, इस तरह के सवाल करते हैं। जब आपने एहराम पहन लिया तो एहराम की हालत में तो क्यों नहीं कर सकते ना, जैसे वो हरम में नहीं, मदीना तो हरम ही है, जद्दा तो नहीं है, इसके अंदर जानवर नहीं मारा जा सकता, शायद इसके अंदर कोई किलिंग नहीं हो सकती, ना दरख्तों को काटा जा सकता है, बिल्कुल सही शायद यानी हुरमत वाली जगह, बिल्कुल सही, उस जगह का एहतराम है, वहाँ पे कोई जुर्म नहीं होगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कत्लो वारत नहीं होगा, जानवर कब को नहीं तकलीफ पहुँचा सकते, तो जैसे इंसानों को पहुँचा सकते हैं तकलीफ, بعض جگہ یہ خاص کے اوپر بہت زور ہوتا ہے کہ جانور کو نہیں تکلیف پہنچانی ہے, درخت کو نہیں کاٹنا, یہ نہیں کرنا, اگر وہاں پہ لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ تو حرم جو ہے نا, حرم چاہے آپ اس میں احرام میں ہے یا نہیں, کیا دونوں کے لیے سیم ہے حرم میں یا احرام والے کے لیے ڈفرینٹ ہے اور دوسری کو جی سب کے لیے, سب کے لیے سیم پر شاید سیم ہے, دونوں کے لیے سیم ہے, احرام ہے یا نہیں, وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا, یہاں پہ تکرار کرنا, وہاں پہ کسی کو تکلیف پہنچانا, اور وہاں پہ یہ حال ہوتا ہے دست گریباں ہو رہے ہیں, کوئی کسی کے اوپر جیپ چیئر چڑھا رہا ہے, چلو اگر کسی نے غلطی سے کی وہ ایک الگ بات ہے, اس کے بعد لوگ پیچھے منہ موڑ کے لوگوں کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, تم نے میری جگہ لے لی, اٹھو یہاں سے, اس کو دھکے دار دے ہیں, لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, یہ تو حرام کیا, مسجد حرام کیا کر رہے ہیں. بالکل بالکل, اس جگہ کا احترام جو ہے نا وہ ہم نہیں جانتے ہوتے, اور جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ حرم کا مطلب کیا ہے, کہ ہم کتنی ایک مقدس جگہ پہ آئے, اس چیز کو نہیں جانتے, تو ہم وہاں پہ جانوروں کو تو چھوڑے, پتہ نہیں جانور آپ کو نظر بھی آئے یا نہیں آئے, لیکن انسانوں کا یہ احترام نہیں ہے, اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بلکہ جب لوگ ایک دوسرے کو برا بلا کر رہے تھے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ تو میرا انکو دیکھا حال ہے, دستوں گرے باہ ہوئے میں ایک دوسرے کے وہ فون دیکھ کے میں ڈر گئی, کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی, تو وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ گریبان پکڑے گئے تھے اور لڑائی کر رہے تھے, اور بالکل کہ ہمیں یہ آداب نہیں ہوتے نا, کبھی حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس جگہ کا, بس یہ کہ حج پہ جا رہے ہیں شوق میں جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں شوق میں جا رہے ہیں, پہلے اس کے احکامات تو سیکھے, عادت سے لگے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کہ جب ہماری یہی کام ہم اپنی ملکوں میں کر رہے ہوتے ہیں یا جہاں پہ رہتے ہیں کرتے ہیں نا, تو پھر ہماری اتنی عادت پڑی ہے کہ ہم وہاں پہ بھی جا کے نہیں اس چیز کے بعد آتے. بس حالانکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتا, اور ہمیں تو یعنی آج بہت اپنے آپ کو پھر بھی کیا بات جی, ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کو اور بھی بہت مشقتیں ہوتی ہیں, تو جس جگہ پہ جانور بھی محفوظ ہے وہاں پہ انسان جا کے یا عورت ہی عزت نہ محفوظ ہو تو کیا ہمارا حال ہے. نہیں ہم تو دور جاہلیت, نہیں ہم دور جاہلیت سے بھی زیادہ کہیں جی حالت میں, جاہلیت میں میں بتا رہی نا, صرف قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے, اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی, اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو آج تو کیا کسی نے ذاتی کسی کے ساتھ زیادہ کتنی بڑی کر لی ہوگی, اگر ویڈیا پیر پہ چڑھ گئی یا کچھ اور ہو گیا تو کیا کسی کتنی اس سے زیادہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, پھر بھی کتنا زیادہ اس کا وابیلا ہوتا ہے. اب آپ لوگ یہ کامات پڑھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ان کو پھیلائیں آگے سے آگے. اچھا جی, عورت کیا گلوز پہن سکتی ہے؟ عورت گلوز پہن سکتی ہے احرام میں؟ جی عورت گلوز نہیں پہن سکتی, گلوز نہیں پہنتی وہاں پہ پہننے احرام کی حالت میں. اچھا پھر عورت ساکس پہن سکتی ہے؟ عورت ساکس پہن سکتی ہے؟ جی پہن سکتی ہے, ٹھیک ہے ساکس پہن سکتی ہے. ہاں جی کیا عورت سلے ہوئے کپڑے سے چہرے کو کور کر سکتی ہے؟ سلے ہوئے کپڑے سے نہیں, سلے ہوئے کپڑے سے نہیں کر سکتی, اسی کو نقاب کہتے ہیں. اگر ویسے گھونگھٹ سا نکال لیا, ذرا آگے کر لیا اپنے چہرے کے آگے ڈال لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی تلبیہ پڑھنا, تلبیہ کہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے؟ کوئی خاص جگہ ہے یا جب سے احرام پہن لیا تب سے شروع کر دینا ہے؟ کس طرح سے کرنا ہے تلبیہ؟ یہ بھی بہت ضروری بات ہے.
یعنی تهران بنام میقات بنام از اون از تو تهران میقات رو میقات آپ لوگ سب کے تو ڈفرینٹ جواب ہیں جی کہاں سے پہننا ہے میں مثلا یہاں سے احرام پہن لیتی ہوں احرام تو کہیں سے بھی آپ پہن سکتے ہیں میں مثلا اپنے گھر سے چلتے ہوئے احرام پہن لیتی ہوں ہاں تو آپ مجھے بتائیں کہ جب میں گھر سے احرام پہن لوں گی کیا یہیں سے تلبیہ کہنا شروع کر دوں گی اچھا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا میقات کے اوپر احرام باندھا تھا نا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا جب آپ میقات جب کراس کریں تب تلبیہ کہنا شروع کرنا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب میں یہاں سے جاتی ہوں میں نے حج تمتع کرنا تو میں میقات سے شروع کر دیتی ہوں پھر تو میں جا کے وہاں پہ جاؤں گی پہلے عمرہ کروں گی پھر کافی دن ہے حج میں تو پھر میں حج میں جب تک حج نہیں ختم ہوتا ہو سکتا پانچ سات دنوں کے بعد حج بوجھ تلبیہ پڑھتی رہوں گی چلیے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ لکھ لیں کہ جب تک احرام پہنے رہیں گے نا اس وقت تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے جب تک احرام سے نکل نہیں آتے تب تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی اور احرام کھولتے کب سب کھولتے ہیں احرام مینا تو گیارہ کو آج تک قربانی طواف افادہ کرنے کے بعد یا پہلے چلیے حج کے آتے ہیں طواف افادہ بفور آج تک طواف افادہ سے پہلے یعنی طواف افادہ سے پہلے آپ کو آپ قربانی کر لیتے ہیں سر آدمی منگوا لیتے ہیں اس کے بعد احرام کھول لیا جاتا ہے کیا کوئی احرام کی ریسٹرکشن رہ جاتی ہے پھر یا نہیں کوئی بھی ریسٹرکشن رہ جاتی ہے یا نہیں صرف ایک رہ جاتی ہے صرف ایک ریسٹرکشن رہ جاتی ہے جب تک پتا وعدہ نہیں کر لیں گے وہ ریسٹرکشن رہے گی کسی کو پتا ہے کون سی نہیں نہیں بال تو پہلے کر لیں خوشبو تو لگا لی تھی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاد آئے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نکال جا سکتے جی بالکل ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا جب تک طواف افادہ نہ ہو جائے تو صرف یہ ایک ریسٹرکشن پھر بھی رہتی ہے باقی کوئی ریسٹرکشن نہیں رہتی باقی پھر خوشبو بھی لگائی ہے دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی لگائی ہے اب کیا ہو گیا قربانی بھی ہو چکی ہے سر بھی منگوا چکے ہیں احرام کھولا جا چکا ہے اگر ایک چیز ابھی بھی رہتی ہے اور کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے صرف یہ والی ریسٹرکشن رہتی ہے یہ طواف افادہ کے بعد اس سے پارے ہوں گے تو یہ یاد رکھیے گا بات تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ خوشبو کب لگا سکتے ہیں مرد میں تلبیہ کب سٹاپ کریں گے جب احرام کھول دیں گے اب احرام کھولنے سے اچھا پرفیوم ہو گیا یا صابن ہو گیا یا یہ سب چیزیں ہوں گی سب ایک ہی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے خوشبو لگانا منع ہے اور یہ آپ کو نہیں پہننی ہے ایسے جوتے نہیں پہننے جو کورڈ ہوں اور کوئی پگڑی وغیرہ نہیں پہننی ہے شلوار قمیض اس طرح سے نہیں پہننی اللہ شلوار کا کی جگہ تیبن نہ ہو تو پھر الگ بات ہے اور کیا چیز شکار نہیں کرنا چلو ہم اس سے تو بالکل فارغ ہی ہوگا کہ ہم تو کرتے ہی ہیں لیکن احکامات پڑھنے کی حد تک یہ سمجھ لیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شکار کر کے لائے اپنے لیے اور کسی محرم کو دے دے وہ شکار کیا ہوا کھانے کے لیے تو کیا محرم کھا سکتا ہے احرام پہنے لینے والا بندہ کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے اچھا اگر وہ एहराम वाले के लिए शिकार करे तो क्या तब एहराम वाला खा सकता?
नो, अच्छा लगे हमें, कहते हमें इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हमें ज्यादा अच्छी तरह आता।
अच्छा जी, कौन कौन से जानवर है जो हरम में भी आप मार सकते हैं?
तो कौन कौन से जानवर?
एक ऐसे हदीस में नहीं आता मगर उससे ज्यादा हदीस में कौन कौन से आते हैं बुक खोलने बगैर बताओ।
माउस है, स्कॉर्पियन है, वो है शादा है, चूहा है, ठीक है, और
कुत्ता, ठीक है,
तो काटने वाला कुत्ता है और कौवा चीज और स्कॉर्पियन और चीजें, ठीक है।
कौवा चीज तो एक जैसे ही है ना, और स्कॉर्पियन और और चूहा और काटने वाला कुत्ता, ये पांच है। और इसी से फिर हर एक जो निजी जानवर है, अब ये नहीं अब आपको पूछे अच्छा फिर साइंटिफिक आ जाए तो फिर उसका क्या करें, अच्छा फिर और कीड़े का नाम बता दे वो आ जाए तो उसका क्या करें, फिर सांप आ गया तो उसका क्या करें, तो ठीक है वो इस सारे उसके अंदर आ जाते हैं ना। ये काटने वाली ऐसी चीजें जो मुझे है जो तकलीफ देने वाली, तो आप उनको भी मार सकते हैं। पेरेंट तस्वीर आप उनके जवाब देने का आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। सुबहानकल्लाह वबिहम्दिका अश्हदु अन्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।